الحمد لله وكفى وسلام على عباده. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما تراجن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا تھا کہ جب مریم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے وزٹ کیا اور ان کو بیٹے کی خبر سنائی کہ تمہیں بیٹا ہوگا، تو پھر انہوں نے پہلے تو بہت ہی حیران پریشان تھی کہ کیسے ہو جائے گا. تو اس کے اوپر نا ایک اور نقطہ جو کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے وہ بہت ہی یعنی بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ مریم علیہ السلام کا جو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ سورہ آل عمران کی بھی شروع کے اندر یہی زکریہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا مزید تفصیل ہے اس کے اندر کہ جب مریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر عبادت کیا کرتی تھیں تو زکریہ علیہ السلام جو کہ ان کے خالو لگتے تھے، تو وہ ان کو یعنی اپنے تبلیغی دوروں سے واپسی کے اوپر مریم علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب وہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس تو بے موسم کے پھل ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے آج کل تو خیر بے موسم کے پھل ویسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جینیٹکس جو ہے وہ پھلوں کی ایسی تبدیل کر دی گئی ہیں کہ جو سردی کے پھل تھے وہ گرمیوں میں بھی اگتے ہیں اور گرمی کے پھل سردیوں میں بھی اگتے ہیں، لیکن پھر بھی سارے پھلوں کے ساتھ آج بھی ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آم جو ہے وہ گرمیوں کا پھل ہے، تو وہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تبھی آم آنا شروع ہوتا ہے، سردیوں میں نہیں ہوتا. لیکن اگر سردیوں میں آپ کو آم نظر آئے کولڈ اسٹوریج کے بغیر فریش فرام دا ٹری، تو آپ کہیں گے کہ یہ بے موسم کا آم ہے، یعنی سردیوں میں تو آم نہیں ہوتا. تو مریم علیہ السلام کے پاس بھی نا ایسے پھل نظر آئے جو کہ اس موسم میں اگتے ہی نہیں تھے. تو اب زکریا علیہ السلام بہت حیرت ہوئی کہ انّا لکی ہذا، انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے یہ آپ کے پاس کیسے آ گئے یہ جو بے موسم کے پھل ہیں. تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، تو میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ بے موسم کے پھل مجھے کھلا دے. ٹھیک ہے، تو زکریا علیہ السلام یہاں پر اللہ کے نبی ہیں، رائٹ؟ اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، نبی سے کم درجے کی ہیں، ولی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن زکریا علیہ السلام کو حیرت ہو رہی ہے کہ بے موسم کے پھل کیسے آ گئے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زکریا علیہ السلام کو یہ بات فوراً یاد آ جاتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں دے سکتے ہیں، ہے نا. لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے یہ سوال کر لیا. مریم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کیسے کلیئر تھی کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اس ماحول میں تھی یا اس ایکٹیویٹی میں تھی، جو ایکٹیویٹی کیا تھی؟ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن والی ایکٹیویٹی، اللہ تعالیٰ سے جڑنے والی ایکٹیویٹی، جس کو عبادت کہا جاتا ہے یا جس کو ذکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں آپ ایکٹیولی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ زکریا علیہ السلام جہاں سے واپس آئے تھے وہاں پر کیا تھا؟ وہ تھا ایکٹیو کنیکشن وتھ مخلوق، کیونکہ زکریا علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں پر ایکٹیو کنیکشن جو ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور خالق کے ساتھ کیسا کنیکشن ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پیسیو کنیکشن. یعنی ایک بیک گراؤنڈ میں خالق کے ساتھ تو کنیکشن چل رہا ہوتا ہے، لیکن فور گراؤنڈ میں ایکٹیولی مخلوق کے ساتھ کنیکشن چل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں نا پھر ویسی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں رہتی ہے جیسی کہ عبادت کے وقت میں رہتی ہے. ठीक है। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो थी ना वो इबादत की हालत में थी, उन्होंने सीधा सा आसान सा जवाब दे दिया कि भैया तो मेरे परवरदिगार ने मुझे मुझे दिया है। ठीक है, अच्छा ये बात यहां तक अगर समझ में आ गई या किसी को कोई इश्काल है सवाल है तो पूछें। ठीक है, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भाई मेरे परवरदिगार मुझे खिलाता है, क्योंकि वो खालिसतन इबादत के माहौल में थी जिसमें अल्लाह ताला से एक्टिव कनेक्शन होता है इंसान का। ठीक है, अच्छा जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल है, अब इस माहौल में ज़करिया अलैहिस्सलाम भी पहुंच चुके थे ना, तो अब उनको भी ये बात याद आई कि भाई अल्लाह ताला के लिए तो बड़ा आसान है बेमौसम के फल दे देना। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर उस वक्त जो है ना मौके महल के हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह जिस तरह आप मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम के फल दे सकते हैं उसी तरीके से मैं भी तो अब बांझ हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी तो बांझ हो चुकी है। ठीक है ना, अब हम भी जो है वो औलाद के मौसम से बाहर निकल गए हैं, हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि जिस बुढ़ापे में औलाद नहीं होती इंसानों को, लेकिन आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप इस वक्त भी हमें औलाद दे दें। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अब जो है वो रिमाइंडर मिलने के बाद, याद दहानी मिलने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह आप मुझे भी एक गुलाम, एक लड़का दे दीजिए, यानी बेटा दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ सुननी थी, अल्लाह ताला के यहाँ फैसले भी हुए हुए थे कि हाँ भाई ज़करिया अलैहिस्सलाम को आना था दुनिया में, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को बहाना बना करके उनको ज़करिया अलैहिस्सलाम अता कर दिए। ठीक है, तो देखिए माहौल में मरियम अलैहिस्सलाम थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर से आए थे, अंदर आकर के वो भी माहौल का हिस्सा बन गए। ठीक है, अब इसके बरअक्स नेक्स्ट मामला क्या हुआ कि जब मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो इस माहौल से बाहर निकली। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है ना वो बात जो हमारे मशायख करते हैं तो उसके अंदर हजरत मशायख जो है वो ये वाली तफसील लेते हैं कि जब मरियम अलैहिस्सलाम ना वो निकली, इन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, तो मकानन शर्किया में जो निकली ना ये वो मौका था मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कि जिसमें वो अहलिहा के साथ थी, अपने घर वालों के साथ थी, अहलिहा। ठीक है, यानी घर वालों के साथ जिस तरह की इंटरेक्शन होती है, ठीक भाई दीनदार घर तो था तो कोई नाउजबिल्ला फिस्को फजूर की बातें तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी दुनियावी मामलात की डिस्कशन होती है घर वालों के साथ रहते हुए। तो अब वो अपने घर वालों के साथ थी और यहां से निकल करके जो है ना वो गई मकानन शर्किया में। मकानन शर्किया में चाहे गुसल करने के लिए गई, चाहे इबादत करने के लिए गई, लेकिन अभी बस उस जगह पर दाखिल ही हुई थी। पहले क्या करके आ रही थी, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करके आ रही थी। अब यहां पर जब आई है तो यहां पर अल्लाह ताला ने भेज दिया अपना फरिश्ता, और फरिश्ते ने आकर के जब उनसे कहा ना कि जी आपको तो होगा एक लड़का, सही है, अहबर लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक लड़का जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हिबा कर दूं। ठीक है, अब मरियम अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात नहीं आ रही कि भाई अल्लाह ताला ने लड़का देना है तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल काम है, है ना, अल्लाह ताला जैसे चाहे जब चाहे किसी को औलाद दे दें, अल्लाह ताला तो असबाब की पाबंद नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम को इस वक्त ये वाली बात याद नहीं आई, हालांकि पहले याद आई थी जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फलों के बारे में पूछा था, यहां पर उनको याद नहीं आई। ठीक है ना, बल्कि कहने लगी अन्ना यकूनु ली गुलामन, है ना, कि गुलामन के मुझे कैसे गुलाम हो जाएगा भाई, वलम यमससनी बशरु वलम अकु बगिया, कि जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं और मैं कोई, यानी मेरी ना शादी हुई है ना मैंने कोई जिना किया, कोई बुरा काम किया। ठीक है, क्यों, इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि अहलो अयाल की तरफ से होकर आ रही थी तो अब उनकी जो निगाह थी ना वो थी मखलूक की तरफ एक्टिवली और खालिक की तरफ थी पैसिवली। ठीक है, तो जब ऐसा मामला होता है और कोई बड़ा मामला सामने नजर आए ना तो उस वक्त जो होता है ना जो एक्टिव नजर होती है वो गालिब आ जाती है, एक्टिव नजर गालिब आ जाती है, और पैसिव नजर नजर जो होती है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है गालिब आने में। ये नहीं कि वो पैसिव नजर का कोई फायदा नहीं है कि भाई पैसिव नजर तो अल्लाह की तरफ थी ही उनकी। ठीक है, वो भी फायदे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी नजर पैसिवली भी, यानी उसके बैकग्राउंड में अल्लाह ताला का एक ध्यान चल रहा है, फोरग्राउंड में मखलूक का ध्यान चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में अल्लाह का ध्यान चल रहा है, ऐसे मामले में क्या होता है कि जब कोई बड़ी चीज नमूदार होती है ना सामने, तो उस वक्त फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फोरग्राउंड वाला रिएक्शन होता है, और फोरग्राउंड का मामला क्या था? मखलूक के साथ, ठीक है ना। तो इनके जहन में भी इमीडिएटली क्या ख्याल आया कि भाई असबाब के बगैर कैसे औलाद हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फरिश्ते ने उनको याद दिलाया, फरिश्ते ने उनको याद दिलाया बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम अलैहिस्सलाम ने जकरिया अलैहिस्सलाम को याद दिलाया था कि भाई ये जो फल है ये मेरे परवरदिगार के लिए देना कोई मुश्किल नहीं है, है ना। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने जकरिया अलैहिस्सलाम को याद दिलाया तो जकरिया अलैहिस्सलाम के भी बैकग्राउंड में तो अल्लाह की याद थी, अल्लाह की तरफ ध्यान था, तो उनको ये बात याद आ गई एंड ही इमीडिएटली रियलाइज्ड कि वाकई ऐसा ही है, अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं है। फल का मौसम जो होता है वो उसके पैदा होने के लिए सबब होता है, ठीक है ना। मौसम आएगा तो फल पैदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला तो इसके पाबंद नहीं है, अल्लाह ताला बगैर मौसम के भी फल पैदा कर सकते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को इमीडिएटली ये बात याद आ गई। उसी तरीके से जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने अहल के यहाँ से वापस आई तो उनके फोरग्राउंड में, यानी उनके एक्टिव जो एक ध्यान बना हुआ था वो मखलूक की तरफ बना हुआ था, पैसिव ध्यान अल्लाह की तरफ बना हुआ था। जब फरिश्ते ने आकर के इतनी बड़ी खबर उनको सुनाई, उनका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, ये कैसे हो सकता है असबाब के बगैर, लेकिन क्या हुआ, फरिश्ते ने उनको याद दिलाया, काला कजालिक काला रब्बु की हुआ अलैया हैयनुन, है ना, आपके रब ने कहा है कि भाई ये मेरे ऊपर बहुत आसान है, ये काम कर देना, बगैर बाप के बेटा दे देना, ठीक है, बगैर शौहर के बेटा दे देना मेरे लिए बहुत आसान है। जब फरिश्ते ने उनको ये बात याद दिलाई तो चूंकि मरियम अलैहिस्सलाम की भी बैकग्राउंड में अल्लाह का जिक्र चल रहा था, वो अल्लाह से गाफिल नहीं हुई थी, कंप्लीटली गाफिल नहीं हुई थी, तो उनको भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने भी सरे तस्लीम खम कर लिया कि अच्छा मेरे परवरदिगार की यही मर्जी है तो ऐसा ही होगा, है ना। रोना धोना, पीटना या मुंह से जो है वो बुरे कलिमात निकालना शुरू कर देना, ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है जी। तो देखिए माहौल का एक तो असर होता है, ये बात याद रखें, माहौल का असर होता है हर इंसान के ऊपर होता है, चाहे अल्लाह का वली क्यों ना हो, अल्लाह का नबी क्यों ना हो, ठीक है। एक बात क्लियर है जी, किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर, माहौल का असर हर बंदे के ऊपर होता है और वो जिस माहौल में होगा उसका इमीडिएट रिएक्शन टू ए बिग इंसिडेंट, ए सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, उसका इमीडिएट रिएक्शन वही होगा जो कि उसके माहौल के असर की वजह से उसके ऊपर तारी है, ठीक है, जो ख्याल तारी है उसके ऊपर वही रिएक्शन होगा। फर्क क्या होता है हम में और अल्लाह के वली में, या अब नबियों की तो बात नहीं है अब क्योंकि नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, अब वली तो होते हैं, हम में और औलिया अल्लाह में फर्क क्या होता है जी, चले आपसे पूछते हैं ताकि इतना भी पता लग जाए कि आप फॉलो भी कर रही हैं इन बातों को कि नहीं फॉलो कर पा रही हैं, ठीक है। तो अब जब ये आपको ये मजमून समझाया तो अब हम आपसे ये पूछते हैं कि हम में और औलिया में फर्क क्या है। फिर भाई जब हमारा रिएक्शन भी ऐसा ही होता है, मखलूक की तरफ हमारा ध्यान जाता है क्योंकि हम मखलूक के माहौल में रहते हैं, हमारा मखलूक की तरफ ध्यान जाता है, ठीक है ना, और अल्लाह के वली का भी यही रिएक्शन होता है, हत्ता के अल्लाह के नबी का भी यही रिएक्शन होता है, तो फर्क क्या हुआ हम में और वली में, या हम में और नबी में फर्क क्या हुआ, फिर ये आपसे सवाल है जी। अगर कोई जवाब लिख रहा है तो रेज हैंड का अगर बटन भी प्रेस कर दें ताकि साजिश को पता चल जाए कि कोई लिख रहा है तो फिर उनका वेट करना चाहिए। चले इन्होंने जवाब लिख के भेजा है कि बैकग्राउंड में अल्लाह का ध्यान चल रहा होता है इसलिए वली फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं, ये भी तो लिखे ना, कैसे मुतवज्जो हो जाते हैं। नबी लॉजिक्स नहीं देते अपनी गलती पर उसकी, आप यानी आपने बात सुनी नहीं, आप अपनी तरफ से जवाब दे रही हैं जो कि ठीक है, आपका जवाब अपनी तरफ से सही है, लेकिन जो बात साजिश ने समझाई है उसके मुताबिक आपका जवाब नहीं है। उनकी निस्बत अपने शेख से मजबूत होती है। ये तो आपने एक जनरल किस्म का जवाब दे दिया भाई, जो इतनी देर से आपको टॉपिक समझाया है उसके मुताबिक जवाब दें ना। याद दहानी पर, इन्होंने ऊपर से अपने जवाब में ये एडिशन किया है याद दहानी पर, उनको बस याद दहानी की जरूरत पड़ती है जी। फर्क ये होता है हम में और अल्लाह के वली में, फर्क ये होता है कि हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस अल्लाह की याद वाला नहीं होता, जबकि वली का बैकग्राउंड प्रोसेस अल्लाह की याद वाला चल रहा होता है, उसके ध्यान अल्लाह की तरफ बना हुआ होता है, ठीक है, चाहे वो मखलूक में रह रहा हो, चाहे वो अपने घर वालों में रह रहा हो, चाहे वो दावत और तबलीग का काम मखलूक में जाकर इंसानों में दावत और तबलीग का काम कर रहा हो, चाहे वो दफ्तर में काम कर रहा हो, चाहे वो बाजार में दुकान पे बैठा हुआ हो, जहां भी हो उसका फोरग्राउंड यानी उसका जो एक्टिव थॉट है वो तो मखलूक से रिलेटेड होता है, मखलूक के बारे में होती है उसकी। भाई मैंने बाजार में कैसे अपनी चीज बेचनी है, मैंने कैसे जो है वो कस्टमर के साथ डील करना है, मैंने कैसे जो है वो दफ्तर में अपना काम करना है, अपनी असाइनमेंट करनी है, मैंने घर के अंदर कैसे, अब कौन सा वाला औरत है मिसाल के तौर पर, कौन सा वाला खाना बनाना है, अब मैंने जो है वो घर के अंदर क्या नेक्स्ट काम करना है, घर की सफाई सुथराई कैसे करनी है, घर के अंदर क्या जो है वो मैंने फर्नीचर वगैरह को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे मैंने बच्चों के साथ जो है वो उनकी तालीम तरबियत कैसे करनी है ना। मखलूक के साथ लगे हुए, मखलूक के साथ लगे हुए मुस्तकिल, ठीक है, जो कि जरूरत है, जो कि जिम्मेदारी है हमारी, मखलूक के साथ लगना, बीवी बच्चों का ख्याल करना, रिस्क का ख्याल करना, कामकाज का ख्याल करना, लेकिन हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ पैसिवली बना है कि नहीं बना, ये हमें डिफ्रेंशिएट करता है औलिया अल्लाह से। अगर हमारा ध्यान पैसिवली अल्लाह ताला की तरफ हर वक्त बना हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया पेश आ गया, कोई 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 नुकसान हो गया, ठीक है, तो उस नुकसान के वक्त जो है ना इमीडिएट रिएक्शन तो हमारा होगा कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई याद दहानी आएगी, कोई हमारा जानने वाला, कोई हमारा दोस्त रिश्तेदार या हमारा कोई उस्ताद, हमारा शेख, वो हमें याद दिलाएगा कि भाई जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है ना, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें याद दिलाएगा। तो इस याद दिलाने से क्या होगा कि अगर हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ पैसिवली बना हुआ था ना, तो हमें ये फौरन, हम फिर उसके बाद जैसे अब आपने लिखा था ना कि लॉजिक नहीं देते, तो फिर यही होगा कि हम लॉजिक नहीं देंगे, हम उल्टी सीधी जो है ना वो, यानी हम क्या कहते हैं कि जिस तरह एक हम एक स्नैप करते हैं, एक रिएक्ट करते हैं, नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, चुप जाओ तुम, मत करो मुझे नसीहत, मत मुझे ये किताबी बातें याद दिलाओ, है ना, मत करो ये सारी बातें मुझसे, हमारा ये रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि हमें फौरन बात याद आ जाएगी और हमारा ध्यान फिर अल्लाह की तरफ बन जाएगा, हम एडमिट कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी सिचुएशन को, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या टास्क बन गया, करने का काम हमारा क्या है, हमारे करने का काम, हमारा गोल इस दुनिया के अंदर क्या बन गया कि हमें अल्लाह ताला की तरफ ध्यान बनाना है, ठीक है ना, हमें अल्लाह ताला की तरफ ध्यान बनाना है। हमने घर बार को छोड़कर, कारोबार को छोड़ करके जंगलों और गारों में नहीं निकल जाना कि वहां बैठ करके अल्लाह ताला की तरफ ध्यान बनाएंगे, वहां पे कोई मखलूक नहीं होगी, वहां पे कोई कामकाज नहीं होगा, बैठ के खूब जिक्र करेंगे, खूब इबादतें करेंगे। नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें रहना इसी घर के अंदर है, हमें इसी माहौल में रहना है, लेकिन हमने थोड़ा सा टाइम खलवत का निकालना है, थोड़ा सा टाइम जो है वो दीन के ऊपर सोचने का निकालना है, फिक्र करने का निकालना है, इसी 24 घंटे के अंदर, इसी घर में रहते हुए, इसी दफ्तर और जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा सा टाइम हमने ऐसा निकालना है कि जिसके अंदर सिर्फ हम हो और हमारा परवरदिगार हो। इसी को अल्लाह की याद के लिए बैठना कहते हैं, इसी को ना फिर कुछ मशायख के नजदीक इसको मुराकबा भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी यानी कोई ऐसा टाइम हो उसमें आप नमाज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन नमाज के बाहर, नमाज के अलावा कुछ टाइम आपने ऐसा निकालना है, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला की तरफ एक ध्यान ऐसा बन जाए जो कि फिर चलता रहे, कामकाज के साथ भी वो पैसिवली चलता रहे। और ये कोई नफली चीज नहीं है, ये कोई, किसी ने एक दफा पूछा था कि जी ये तो नफली बात है अल्लाह का जिक्र करना, तो आप नफली बात के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना, हालांकि हमारे ऊपर तो अभी फराइज ही हैं, हमने तो अभी तक नमाजें पूरी अदा नहीं करी, कदाए उंगली हमारे ऊपर है, तो हम ये कैसे करें भाई। नहीं, ये नफली काम है ही नहीं भाई, ये तो फर्ज है, ये तो फर्ज है अल्लाह ताला की तरफ ध्यान बनाना। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये ध्यान बनाने की मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हमारा ईमान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है, क्योंकि जब कोई मुसीबत का मामला हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आजमाना है दुनिया के अंदर, आजमाइशें तो आनी है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, आजमाइशों के बगैर दुनिया की जिंदगी नहीं निकलती, आजमाइशें आनी है, जब कोई खुदा न खास्ता जब आजमाइश आएगी ना, तो अगर हमारा ध्यान नहीं बना होगा तो उस वक्त शैतान हमें ईमान से महरूम करने की भरपूर कोशिश करेगा और कामयाब हो जाएगा। वो कोई जुबान से कलमा कहलवा देगा, कोई ऐसा अमल करवा देगा कि जिसकी वजह से हमारा ईमान खत्म हो सकता है, ठीक है। और ईमान की हिफाजत इससे बड़ा फर्ज और कोई और नहीं है, इससे बड़ा फर्ज कोई और है ही नहीं ईमान की हिफाजत से, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह की तरफ ध्यान बनाने की कोशिश करना, फिक्र करना, ये नफली काम नहीं है, ये ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस अंदाज से देखें ना, तो फिर ये कोई मुस्तहब और नफली अमल नहीं है, ठीक है। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े से एक जबरदस्त नुक्ता जो है ना, वो हमारे मशायख ने यानी बाकायदा दलाइल देकर के अंबिया की जिंदगी से, औलिया की जिंदगी से दलाइल देकर के हमें बात समझाई है, जो आपके सामने साथ जिसने अभी बयान करी। अच्छा, फिर उसके बाद जो पिछली क्लास के अंदर मसला चल रहा था, जो टेंजेंट में हम निकला करते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो वो क्या था कि भाई ये मरियम अलैहिस्सलाम का जो सारा का सारा मामला हुआ कि जी बगैर मर्द के जो है वो बच्चा कैसे हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, राइट, उसके ऊपर साजे से बात समझानी शुरू करी थी कि भाई ये सारी डिटेल्स जो होती है ना, ये हर एक को बताने की नहीं होती, ठीक है। इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को ना तदरीजन, जैसे होता है ना हमारा जिस्म जो है वो तदरीजन बढ़ता है, पहले छोटा होता है, जरूरियात भी उसकी कम होती है, हत्ता कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके जो है वो लंग्स भी पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं ना, उसका हार्ट भी जो है वो अभी काफी उसके अंदर भी बाकी जाके डेवलपमेंट होंगी, और उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, वक्त के साथ साथ उसके ऑर्गन्स डिवेलप होते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से जो हमें जाहिरी तौर पर ऑर्गन्स नजर आ रहे होते हैं या एक्सरे के जरिए से हमें अंदर है ना लंग्स हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से इन ऑर्गन्स के अंदर अल्लाह ताला ने बाकायदा ग्लैंड्स रखे हैं। ग्लैंड्स कहते हैं उन मुकामात को, जगहों को जहां पर से कि कुछ कुछ एसिड्स या कुछ जो 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 सिक्रीशंस निकलती हैं, ठीक है ना, कुछ जो है वो उसके अंदर से, यानी अब डॉक्टर लोग मौजूद हैं उनके सामने मैं बोलता हूँ अच्छा भी नहीं लग रहा, पता भी नहीं है मुझे कि ज्यादा इसके अंदर, लेकिन बहरहाल कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो ग्लैंड्स भी जो होते हैं ना, वो बच्चे के अंदर डिवेलप नहीं हुए हुए होते हैं, वो टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लैंड्स भी डिवेलप होते हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर से जो है वो सिक्रीशंस भी निकलनी शुरू होती हैं, ठीक है, और उन्हीं सिक्रीशंस की बुनियाद पर, उन्हीं ग्लैंड्स के एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है, बच्चे का जो 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 माइंडसेट होता है, थिंकिंग होती है, वो भी तदरीजन डिवेलप हो रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए वक्त बनाया है कि भाई 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई है, 6 साल 7 साल के बच्चे के अंदर ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं वो ऐसे डेवलप हो चुके हैं, फिर उसके बाद और बड़ा होता है और डेवलप होता है और बड़ा होता है और डेवलप होते हैं, हत्ता के शरीयत ने बाकायदा डिफाइन किया कि एक वक्त आता है कि जिसके अंदर के जो बच्चा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि जिसके अंदर उसको बलागत की बलूगत की उम्र कहते हैं, बलूगत की उम्र, बलागत नहीं, बलूगत की उम्र कहते हैं, ठीक है ना। लड़के के लिए वो उम्र 12 साल भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, एनी टाइम आफ्टर 10 11 एनी टाइम जो है वो बालिग हो सकता है, इहतलाम हो जाए उसको, उससे जो है वो उसकी बलागत का वक्त, बलूगत का वक्त शुरू हो जाता है। अब उसके ऊपर जो है वो शरीयत ने अहकामात फर्ज कर दिए, नमाज पढ़ना अब उसके ऊपर फर्ज है, रोजे रखना अब उसके ऊपर फर्ज है, ज़कात देना अब उसके ऊपर फर्ज है जब वो बालिग हो गया, उससे पहले जो है वो आदत बनाने के लिए उसको नमाज और रोजे रखवाए जा रहे होते हैं, नमाज पढ़वाई जा रही होती है, ठीक है ना, आदत बनाने के लिए। आदत नहीं बनाएंगे तो बुलूगत के बाद वो नहीं पढ़ सकेगा नमाज, ठीक है, लेकिन फर्ज नहीं हुई नमाज अभी उसके ऊपर। उसी तरीके से सच बोलने की आदत बनाई जाती है पहले से, अगर सच बोलने की आदत नहीं बनी बल्कि झूठ बोलने की आदत लग गई उसको, तो अब जिस दिन वो बालिग होगा तो अब हर झूठ के ऊपर उसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता पड़ रहा होगा, उसके नाम आमाल के अंदर गुनाह कबीरा लिखा जा रहा होगा हर झूठ के ऊपर, बलूगत से पहले नहीं लिखा जा रहा, तो बलूगत से पहले बोलने दो उसको झूठ, है ना, अभी तो बच्चा है, अभी तो खेल ले, यानी झूठ से खेल ले, सच से खेल ले, राइट, नहीं, आदत आपको पहले से बनानी होगी, ठीक है ना, वरना बलूगत के बाद वो एकदम से स्विच करके जो है वो झूठे से सच्चा नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो शरीयत ने जो है ना वो बाकायदा इसके लिए फिजिकल साइंस भी बताए हैं कि भाई इसके बाद बलूगत हो जाती है, अब जो है वो फराइज हो गए मामला, अब जो है वो बच्चे के अंदर और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई भी होती हैं, लड़की के अंदर वो उसकी अलग एज होती है, कुछ लड़कियां जो है वो 8 साल में भी बालिग आजकल हो रही हैं, बल्कि वेस्टर्न सोसाइटी में जाके देखें तो 6-6 साल की लड़कियां जो है वो बालिग हो रही हैं, ठीक है ना, बालिग उनके यहाँ तो खैर ये शरीयत के अहकामात वगैरह का तसव्वुर नहीं है, लेकिन उनके यहाँ क्या हो रहा होता है कि बेटी यानी लड़की इतनी छोटी है और उसको औलाद हो गई, ठीक है, वो बगैर शौहर के औलाद नहीं होती वहां पर, वो तो मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ खाली हुआ था, वहां तो शौहर के साथ, शौहर यानी बगैर निकाह के किसी लड़के के साथ उसकी औलाद हो रही होती है, राइट, इतनी कम उम्र के अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो इतनी जल्दी डिवेलप हो गई। कैसे हो गई इतनी जल्दी डिवेलप? हमारे यहाँ भी लेकिन 9 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो रही हैं, और इसका ताल्लुक जो होता है ना किन चीजों के साथ होता है, सबसे पहले तो खुराक के साथ इनका ताल्लुक होता है, ऐसी गजाएं, ऐसे उनके अंदर यानी मैनिपुलेशंस हुई हुई हैं खाने पीने की चीजों के अंदर, राइट, कि उनको खा करके जो है ना वो बॉडी के अंदर मेजर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं, जल्दी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से बुलूगत की उम्र खुसूसन लड़कियों के अंदर बहुत कम होनी शुरू हो गई है, वरना यूजुअली क्या है 13 साल की उम्र में बालिग होना, 12 साल की या 11 साल की उम्र में बालिग होना, उससे पहले पहले बालिग नहीं होते थे। तो इनका ताल्लुक एक तो गजाइत के साथ है, खाने ऐसे खा रहे हैं जिनके अंदर इतनी इन्होंने यानी मिलावटें करी हुई हैं और इतने केमिकल्स डाले हुए हैं और क्या 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 कहते हैं उनको, सारी टर्म्स मेरे ज़हन से सब निकल गई हैं सारी। बहरहाल दूसरी चीज क्या होती है कि जिसकी वजह से, अच्छा ये बालिग होने का मतलब क्या, बालिग होने का मतलब ये कि जो 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 ये जो ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर बनाए हैं ना, तो इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है कि जैसे लिक्विड रिलीज करना शुरू हो जाए, छोड़ना शुरू हो जाए, उनके अंदर जो मादा होता है ग्लैंड के अंदर, वो ग्लैंड इतना इतना मैच्योर हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि उसके अंदर से अब वो मादा जो है वो रिलीज होना, निकलना शुरू हो जाए, उस मादे के रिलीज होने की वजह से जो है ना वो माइंड के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, सोच के अंदर चेंजेस आती हैं और बॉडी के फंक्शंस के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। यानी ये जो चेंजेस आ रही हैं ये किस वजह से आ रही हैं? ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से आ रही हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड की सिक्रीशन जो हो रही है, यानी वो जो माता अपना रिलीज कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किसकी बुनियाद पर हो रहा है? इसकी बुनियाद जो अल्लाह ताला ने जो नॉर्मल सिस्टम बनाया है, यानी नॉर्मल हालात में जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन शुरू होती है ना, वो किस बुनियाद पर होती है? आपसे अगर पूछें नॉर्मल हालात में, जब सब ठीक है, गजाइत का भी मसला नहीं है, माहौल का भी मसला नहीं है, तो फिर नॉर्मल हालात में क्या बेसिस बनती है कि ग्लैंड्स की सिक्रीशन शुरू हो जाए? किस बुनियाद पर शुरू होती है? जी, फीलिंग्स। फीलिंग्स तो रिजल्ट है, फीलिंग्स तो रिजल्ट है उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन का। जी एग्जैक्टली, एज। एज की बुनियाद पर, क्या मतलब एज? क्या चीज होती है? वक्त का गुजरना, वक्त का गुजरना, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है कि भाई 13 साल गुजर जाएंगे उनकी पैदाइश के बाद, 12, 12.5 साल गुजर जाएंगे पैदाइश के बाद, यानी एज हो गई 12.5 साल 13 साल। अब इस एज में अल्लाह ताला का ये सिस्टम है कि वो ग्लैंड्स इतने बड़े हो गए, सिक्रीशन शुरू हो गई। लेकिन ये है अल्लाह ताला का बनाया हुआ तबीयी निजाम। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में हमें एक और बात बताते हैं, क्या बताते हैं? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, कि बर में, खुशकी में और तरी के अंदर फसाद पैदा हो गया। फसाद, अंग्रेजी में भी इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, फसाद। फसाद क्या चीज होती है? कि जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम था ना, जिसको इस्लाह वाला निजाम कहते हैं, या सलूहा, सलूहा का मतलब सालेह, सही, इस्लाह, जिसकी आपने, जिसको आपने ठीक कर दिया हो, पहले उसमें खराबी थी, अब वो ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने जो एक इस्लाह शुदा निजाम बनाया है दुनिया के अंदर, इंसानों का, जानवरों का, खुशकी और तरी का, इस निजाम में इंसानों के गुनाहों की वजह से फसाद बर्पा हो गया, खराबी पैदा हो गई इनके अंदर, हर चीज में खराबी पैदा, ठीक है। तो अब ग्लैंड्स की सिक्रीशन में भी खराबी पैदा हो गई हमारे गुनाहों की वजह से, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया? गुनाह क्या थे? एक गुनाह तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जो गिजा थी, उस गिजा के अंदर जाकर के खराबियां पैदा करना, मिकदार बढ़ाने की खातिर, कि बहुत ज्यादा मिकदार में बननी शुरू हो जाए, ठीक है, इनको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा मिकदार में बननी शुरू हो जाए ताकि उनसे पैसे ज्यादा कमाए जा सके। इसलिए नहीं कि लोगों की भूख मिट जाए, बल्कि उनसे पैसे ज्यादा कमाए जा सके। अच्छा, जब इन्होंने गिजा की मिकदार को खूब बढ़ाया, ठीक है, काफिरों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीजें अपने साइंस लैब्स के अंदर जाकर के सीख, तो उन्होंने पहले तो ना लैब्स में जाकर के ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि जी जितना हमारे खेत के अंदर पैदा होता है उससे हम 10 गुना ज्यादा कैसे पैदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 10 गुना ज्यादा खूब एक्सपेरिमेंट करके साइंस वगैरह में खूब अपना दिमाग खपा करके 10 गुना ज्यादा पैदा करना शुरू कर दिया। अब 10 गुना ज्यादा पैदा करें, पैदा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब भाई आप ऐसा करें ना कि इसको आप फैलाएं, गरीबों के अंदर फैलाएं, ठीक है ना, दुनिया में कहीं कहत ना हो, कहीं पे गुर्बत ना हो, आप उनके अंदर इस चीज को फैलाएं जो कि आपने अपने साइंस के जरिए से पैदा करी है। वो तो इन्होंने करना नहीं था, क्योंकि ये तो थे दुनियादार, इनको आखिरत की फिक्र नहीं, इनको सवाब की फिक्र नहीं। वो अगर कोई लोकल है वहां पर तो एडमिन साहब को फोन करके अगर दरख्वास्त कर दें कि ये जो साहिबा अनम्यूट हुई हुई है उनको म्यूट कर दें, वो शायद उनकी बहन भी होती है क्लास में, उनको बता दें वो आदमी किसी काम से गई हुई है, मेरे पास एडमिन एक्सेस है नहीं। अच्छा, तो अब उन्होंने इतना गिजा को बढ़ाया ना, तो गिजा को भाई आप गरीबों में बांटें ताकि लोग भूखे ना रहें, ये तो उन्होंने करना नहीं था। उन्होंने तो बनाने थे इसके ऊपर ज्यादा पैसे। तो अब ज्यादा पैसे बनाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये 10 गुना ज्यादा फिजा है, तो अब इसको हम इससे पैसे कैसे बनाइए, तो खराब हो जाएगी थोड़े अरसे में। तो अब उन्होंने इस गिजा को प्रिजर्व करने के लिए बनाए और केमिकल्स और दवाएं बनाई, प्रिजर्व करने के लिए, उसमें कीड़े लग जाएंगे तो कीड़ों को मारने के लिए वो पेस्टिसाइड्स बनाए, ठीक है ना, पेस्टिसाइड जो कि कीड़ों को कीड़ा मार दवा जिसकी वो जरासीम कुश दवा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए कि भाई इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो ज्यादा हो जाए, ताकि ये जो दुकानों में पड़ा हुआ हमारा जो 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 सब्जियां और फल वगैरह हैं वो दुकानों में जल्दी खराब ना हो, जल्दी सड़े और गले ना, एक दिन में गल जाती हैं गर्मी के मौसम के अंदर, तो ज्यादा जल्दी ना गले। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इनकी जो है ना वो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर देते हैं, उसमें से सड़ने की जो जीन्स हैं उन सड़ने की जीन्स को ही निकाल देते हैं, मार देते हैं उन जीन्स को, ठीक है। तो अब स्ट्रॉबेरीज जो है वो जो एक दिन में सड़ जाती थी अब जो है वो 7 दिन तक पड़ी रहे नहीं सड़ती, 2-2 हफ्ते तक पड़ी रहे नहीं सड़ती। तो ये क्या किया उन्होंने, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई जो तखलीक थी ना उसके अंदर अपनी शहवत को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को पूरी करने के लिए उस तखलीक के अंदर इन्होंने जाकर के तब्दीलियां करनी शुरू करी, है ना, ताकि पैसे ज्यादा बन सके, उनकी चीज खराब ना हो, खरीदने वाले आकर के उनको खरीदें, इनके बैंक बैंक अकाउंट के अंदर ज्यादा पैसे आए। ये क्या है, ये नेकी का काम है कोई, ये नेकी का काम नहीं है, ये गुनाह का काम है, ठीक है ना। यानी लालच और हिर्स और हवस की वजह से आपने अल्लाह की मखलूक के अंदर चेंजेस करी हैं, अल्लाह की मखलूक के साथ खैरख्वाही की वजह से नहीं चेंजेस करी हैं आपने, अपनी हवस को पूरा करने के लिए चेंज किया है। तो इस गुनाह की वजह से क्या हुआ कि ये जो गजाइत वाली चीजें थी ना, इनको जो हम लोग खाते हैं तो उन पेस्टिसाइड्स के असर की वजह से, उन प्रिजर्वेटिव्स के असर की वजह से, उन जेनेटिक स्ट्रक्चर की तब्दील होने की वजह से, जब हम उन चीजों को खाते हैं तो अब हमारे अंदर जो हमारा फिजिकल सिस्टम है उसमें भी खराबियां पैदा होती हैं, और उस फिजिकल सिस्टम के अंदर सबसे सेंसिटिव जो चीजें मौजूद हैं वो ये ग्लैंड्स ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले खराबी किसके अंदर, इन ग्लैंड्स के अंदर पैदा होती है, ठीक है ना। तो अब इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है ना वो एब नॉर्मली होनी शुरू हो जाती है। आप देखें आज के दौर के अंदर क्या क्या अमराज मौजूद है, कितनी औरतें हैं इस वक्त, कितनी बच्चियां इस वक्त, क्या है वो पीसीओ जिसको कहते हैं जी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, है ना, ओवरीज के अंदर सिस्ट पैदा हुए हैं और उसकी वजह से क्या क्या उनके उनके मसले मसाइल पैदा हुए हैं, वेट कंट्रोल नहीं होके दे रहा और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम दूसरी भी उनके साथ लगी हुई होती है। ये कहां से इतनी सारी बीमारियां पैदा हो गई है ना, ये बुरी गिजाएं खाने की वजह से हुई है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही चीजें मौजूद है मार्केट के अंदर। मसला हमारा ये नहीं है कि जी हम जाकर के अपनी अपनी सब्जियां उगाएं और अपना फल खाएं, वो हम कर नहीं सकते। मसला हमारा ये है कि जो हमें जहर खिलाया जा रहा है ना, हम उसको जहर नहीं बल्कि दवा समझ के खा रहे होते हैं। यानी सिर्फ जो है वो तबीयत खराब नहीं हुई है, सिर्फ जो है वो गजा खराब नहीं हुई है, बल्कि हमारा दिमाग भी खराब हो गया है ना, जहर को जो है वो कलाकंद समझ के खा रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो एज फैक्टर था, एज की बुनियाद पर सिक्रीशन पैदा होनी थी, ये डिस्टर्ब हो गया, फसाद पैदा हो गया इनके अंदर, और ये बहुत कम एज के अंदर ये सिक्रीशन पैदा होनी शुरू हो गई। ये तो एक मसला हुआ, एक रीजन बना, इसका कॉज बना। दूसरा कॉज क्या बना कि भाई अल्लाह ताला ने जो इंसानों का मुआशरा बनाया था उस मुआशरे के अंदर एक शर्मो हया का सिस्टम था, ठीक है ना, कि आप जो है वो इन चीजों को, यानी इंसानी बॉडी का जो है ना वो इस तरीके से मुजाहरा नहीं करेंगे, इंसान के बदन के ऊपर से लिबास उतार करके पूरी दुनिया के अंदर उसको नचाएंगे नहीं, उसकी जो है वो तस्वीरें जो है वो नहीं पूरी दुनिया के अंदर पेश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पिछली सदी के अंदर ये चीज जो है पहले अगर होती भी थी तो बंद कमरों में होती थी, किसी मखसूस जगह पर होती थी, जो कि वो गंदी जगह होती थी हर शहर के अंदर कोई इस तरह की। लेकिन जब से ये टेलीविजन आया 1950s के अंदर, टेलीविजन इन्वेंट हुआ,
अब क्या हुआ कि वो जो यानी जो बेहयाई के अड्डे थे ना, जो कि छुप छुपा करके किसी शहर के कोने कुदरे में कहीं हुआ करते थे और वहां पे बुरे लोग जा करके अपनी शहवतपुरी को क्या करते थे, अब वो बेहयाई का अड्डा जो है वो हर हर घर के अंदर दाखिल हो गया, हर हर घर के अंदर। अब उस टेलीविजन के अंदर इसी तरह के इमेजेस जो है, तस्वीरें और बातें और लैंग्वेजेस और ऐसी हरकतें टेलीविजन के ऊपर हर घर में बंदा बैठ करके देख रहा है, बल्कि पूरी फैमिली साथ बैठ करके देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, जो सो कॉल्ड बुजुर्ग, वो हालांकि बुजुर्ग से जो है वो एक अच्छा चीज जहन में आती है, लेकिन बूढ़े का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो बूढ़े भी बैठ करके देख रहे हैं, जवान भी बैठ करके देख रहे हैं, बच्चे भी बैठ करके देख रहे हैं। अब ये जो इमेजेस होते हैं ना, इंसानी जिस्म के जो इमेजेस होते हैं, अल्लाह ताला ने इनका भी सिस्टम रखा था। क्यों? इसलिए कि भाई अल्लाह ताला ने तो तौलीदी निजाम बनाया है ना, इंसान की नस्ल चलानी है अल्लाह ताला ने, आगे नस्ल चलाने के लिए मर्द और औरत की शादी का निजाम रखा था शरीयत के हिसाब से, ठीक है, और उस तरीके से फिर इंसान की नस्ल आगे चलनी थी। तो इंसान की बॉडी को देख करके फिर शहवत भड़कती है और फिर ये नस्ल आगे चलती है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। लेकिन जब इसके बगैर ही इसके यानी इसके इससे हट करके हर बंदा इस तरह की चीजें देख रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे भी वही फसाद पैदा होता है जो कि गजाइत की वजह से पैदा हुआ, कि ये जो ह्यूमन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस किस्म के इमेजेस को जल्दी देखना भी शुरू कर देते हैं ना, तब भी ये फायर अप हो जाते हैं। फायर अप होने का मतलब कि इनकी सिक्रीशन शुरू हो जाएंगी, इनके अंदर से जो है वो मादा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और इसकी वजह से कम कम उम्र के बच्चे वो बेहयाई के कामों के अंदर पड़ जाते हैं। शादी कब होनी है उनकी, बहुत दीनदार घराना हुआ, बहुत दीनदार घराना हुआ तो लड़के की शादी 19 साल में करेंगे, 19 साल, ठीक है, और दुनियादार लोग 35 साल के बाद सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा अभी शादी करनी है, अभी तो ये सेटल नहीं हुआ, अभी तो इसने कमाना शुरू नहीं किया, अभी तो जो है वो इसने घर बनाना है, अभी तो इसने हज भी करना है, शादी से पहले हज भी करना है और शादी से पहले ये करना है, पूरे खानदान की शादी करनी है, फिर उसके बाद इसकी शादी होगी, है ना। तो ये जो खाने पीने की वजह से और माहौल के अंदर जो वो इमेजेस देख रहा है, मुस्तकिल घर में टीवी नहीं भी है, बाहर जाकर के बिलबोर्ड के ऊपर नजर आएगा, वीडियोस चल रही होती हैं पूरी बिलबोर्ड के ऊपर, दोस्तों के यहाँ जाकर के देखेगा, रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के देखेगा या देखेगी, ठीक है, तो अब उसकी तो सिक्रीशन स्टार्ट हो गई है 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, ठीक है ना। अब वो कब तक अपने आप को बचाएगा, कैसे बचाएगा अपने आप को, माँ बाप को फिक्र ही कोई नहीं, कैसे बच्चे के साथ क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं और उसको इस हराम से बचाना है, कैसे, कोई फिक्र ही नहीं, कुछ पता ही नहीं किसी को, बस फिक्र है तो किस बात की, स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाई अच्छी तरीके से करें, उसके ग्रेड्स इसी तरह से आ जाएं और जो है वो उसकी दोस्तियां बन जाएं और वो सोशली जो है ना वो बड़ा एक्टिव और बड़ा एक्सेप्टेबल किस्म की पर्सनैलिटी बन जाए उसकी, कपड़े जो है वो हमारे हिसाब से पहनना शुरू कर दे, अच्छा खासा ब्राउन गोरा साफ बनाने की कोशिश करती हैं माएं अपने बच्चों को, है ना, 3-पीस सूट ऐसे उसको पहनने का सलीका आ जाए और उसको फलानी जगह का सूट पहनने का सलीका आ जाए उसको, ये सर है ना, ये तो सारी की सारी फोकस होती है माँ बाप की, उनको अंदाजा ही कोई नहीं, उनको फिक्र ही कोई नहीं इस बात की कि बच्चे के अंदर ग्लैंड्स की डेवलपमेंट इस वक्त कहां पहुंची हुई है, किन चीजों को देख करके वो फैंटेसाइज कर रहा है, छुप छुप करके फोन के ऊपर या टीवी के ऊपर इंटरनेट के ऊपर वो क्या क्या चीजें देख रहा है, क्या क्या चीजें पढ़ रहा है, कोई परवाह ही नहीं किसी को, तो इस वजह से जो है ना वो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। शादी जब होती है, जब कभी जाके शादी होगी, उससे पहले ही उनका सिस्टम खराब हो चुका होता है। अब इतने इतने कपल्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अब वो शादी तो हो गई लेकिन दे आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग, या ये कि दे आर चले उनकी फिजिकल सिस्टम अभी तक काम कर रहा है, मेंटली वो कहीं और के हो चुके हैं, अब उन्होंने अपनी बीवी का क्या होना है, या बीवी है तो शौहर का क्या होना है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो अपनी मोहब्बतें लगा चुकी है, کیونکہ 8-9 سال کی عمر سے اس کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر کے, بلکہ اب تو پاکستانی فلمیں نعوذ باللہ انڈین فلموں سے بھی زیادہ شاید بدترین ہو گئی ہیں, یا ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے. اس کی تو پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو چکا ہے نا. اب کیا شادی, ازدواجی جھگڑے, گھروں کے اندر جو ہے وہ فساد, میاں بیوی سے خوش نہیں, بیوی میاں سے خوش نہیں, ایسی کوئی تھوڑی ہے سب کچھ. صرف ساس کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے نہیں ہوتے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ساس کی وجہ سے سارے مسئلے ہوتے ہیں. ساس دنیا سے چلی جائے, ساس کا سسٹم ہی ختم ہو جائے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بے وقوفی ہے ہماری. وہ ساس خود جو ہے وہ ان مسئلوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اس نے آگے بھی مسئلے پھر ڈالنے اس نے اپنے بیٹے کی اس کی زندگی میں اور بہو کی زندگی میں. لیکن دس از ناٹ دی اونلی پرابلم. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں بہت, یعنی دے ہیو کراسڈ آل لمٹس ناؤ. اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے کہ الامان والحفیظ. ٹھیک ہے, اب ہمارا حال کیا ہے کہ پہلی تو ہمیں فکر کوئی نہیں, اگر کوئی فکر دلاتا بھی ہے نا اس طرف, تو ہم جو ہے نا وہ اس ہرن کی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جس کے سامنے شیر کھڑا ہو منہ پھاڑے ہوئے اور اس ہرن کو کھانے والا ہو. تو ہرن کہے کہ اچھا میں اپنے آپ کو بچا تو سکتی نہیں ہوں, چلو میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں, ہے نا, تو شیر مجھے نہیں کھائے گا. ہمارا یہی حال ہے, ہم آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں, دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں, ہے نا, کہ پپو یار تنگ نہ کر, خام خواہ مجھے جو ہے وہ تم نے فکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے میری بے فکری کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی تھی, ہے نا, وہ تو جب کوئی طوفان آئے گا تو دیکھا جائے گا, ہے نا, جب بچہ کوئی حرکت کرے گا, جب بیٹی کوئی حرکت کرے گی, تب دیکھ لیں گے یار ابھی کیوں خام خواہ تم جو ہے نا وہ میری زندگی کے اندر ایک پریشانی پیدا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, آنکھیں بند کرنی ہے اپنی. لیکن آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہولناک واقعات آپ بھی سنتی رہتی ہوں گی, ہم بھی سنتے رہتے ہیں, ہم تو بلکہ ڈائریکٹ بھی ایسے ہولناک واقعات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر پتا ہونا ضروری ہے آپ کے لیے, کیونکہ اب آپ بچی نہیں ہے کہ جی بچوں سے جو ہے ان چیزوں کو چھپاؤ. اچھا, بات تو اصل میں کیا ہو رہی تھی, بات تو یہی ہو رہی تھی کہ بھائی جب یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے نا, تو اس وقت جب آپ ان ڈیٹیل سے بچوں کو ایکسپوز کرتے ہیں نا, تو یہ کوئی آپ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بلکہ بیسیکلی واٹ یو آر ڈوئنگ از فائرنگ اپ دیئر گلینڈز بیفور دا ٹائم ہیز کم. اس سے پہلے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو سکیں, اس سے پہلے ہی جب آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا تھرڈ گریڈ کی وہ سائنس کی کتاب کے اندر, اور بڑھاتے رہے حتیٰ کہ سکس گریڈ کی سائنس کی کتاب آج کل جو پاکستانی اسکولس کے اندر پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, سکس گریڈ کی کتاب کے اندر سنا ہے کہ ایم بی بی ایس لیول کی باتیں جو ہیں وہ تفصیل سے کھول کھول کر کے ٹیکسٹ میں بھی اور پکچرز کے اندر بھی, ہے نا, اور وہ اس کے اوپر دلیلیں ایک سے ایک بے وقوفی کی دلیلیں. بچوں کو سب پتا ہونا چاہیے اور پتا ہو تاکہ وہ اپنے آپ کی اپنی حفاظت کر سکیں. حفاظت یہ پکا جھوٹ ہے, کوئی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس طریقے سے, بلکہ الٹا وہ ایکسپوز ہو کر کے وہ ونریبل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس کے دماغ جو ہے نا پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اسی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا دھیان پھر کسی اور چیز میں نہیں لگے گا, کسی کنسٹرکٹیو چیز میں اس کا دھیان نہیں لگے گا. وہ ہر وقت اس کو پھر اپنی جو ان گلینڈز کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک شہوت پیدا ہو گئی ہے, اب اس شہوت کی تسکین اس نے کہیں نہ کہیں جا کر کے کرنی ہے. کزنز میں کرے گا, دوستوں میں کرے گا, یونیورسٹی کالج میں جا کر کے کرے گا, نہیں کرے گا کہیں نہیں مل رہا تو ایسے بھی کرے گا جس کا کہ ہم زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے, جس بات کو اپنے سگے بہن بھائیوں کے اندر بھی کرے گا. ایسے واقعات بہت موجود ہیں اس وقت, صرف امریکہ یورپ کے اندر نہیں, پاکستان انڈیا کے اندر اپنے سگوں کے ساتھ بھی کرے گا یا کرے گی. انسیسٹ کہتے ہیں اس کو, اور یہ چیز بھی بہت زیادہ موجود ہے اس وقت, بہت زیادہ موجود ہے اس وقت. تو کہنے کا مقصد ان ساری تفسیرات کا کیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا دیز آر ریئل, یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے چاروں طرف ہو رہی ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ یعنی فل ٹائم فکر کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بچنے کے لیے, اور اپنی اولادوں کو, اپنے گھر بار کو بچانے کے لیے, اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ میں سے اکثر شادی شدہ ہیں, شوہر صاحب جاتے ہیں, ہے نا, اور دنیا کے اندر کوئی ایسا دفتر نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ حسینائیں موجود نہ ہوں, ہے نا, بازار کے اندر تو ویسے ہی آتی ہیں. تو گھرانا بچانا جو ہے نا, یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ میں تو اپنی دوستوں کے ساتھ لگی بھی ہوں اور گھرانا جو ہے وہ بچانے کے لیے بس شوہر کو دو چار جو ہے وہ ڈانٹے سنا دوں گی تو وہ رہے گا, لائن پہ رہے گا. پھر وہ آپ کی ڈانٹے سنانے سے وہ لائن پہ نہیں رہے گا, بلکہ الٹا جو لائن سے نکل رہا تھا نا وہ اور تیزی سے نکلے گا, ٹھیک ہے نا. ہوش کے ناخن لینے ہوتے ہیں ان کے لیے, سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں ان کے لیے, توجہ دینی پڑتی ہے ان کے لیے چیزوں کو. اپنا گھروندہ بچائیں, ہے نا, اپنا گھروندہ بچائیں, پھر اپنی اولاد کا گھروندہ بچائیں, ٹھیک ہے. ورنہ بہت بھیانک حالات موجود ہیں. اور اب تو ابھی دو تین دن پہلے ہمارے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو سینٹ اور جو قومی اسمبلی ہے نا, سینٹ اور قومی اسمبلی, پتہ ہے وہاں کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا چپکے سے انہوں نے پاس کیا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پاس کیا ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. اور حکومت نے خالی پاس نہیں کیا ہے, یعنی حکومتی پارٹی نے پاس نہیں کیا ہے, بلکہ حکومتی پارٹی پلس اپوزیشن, یہ جو دنیا دار والے اپوزیشن, دیندار پارٹیز نہیں, جمعیت علماء اسلام اور اسلامی ہے, یعنی جو کیا کہتے جماعت اسلامی, وہ اس میں شامل نہیں تھی. باقی تینوں جو جن کے تماشے چلتے رہتے ہیں نا, اور ہم جو ہے وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو کرپشن کرنے والے تھے اور وہ کرپشن کے خلاف تھے اور یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں اور یہ ایسے ہیں, انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, وہ ان کے خلاف ہیں, وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں, یہ سارا سموک سکرین ہے, یہ سارا آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تماشے کرتے رہتے ہیں سارے کے سارے. اصل میں یہ سارے ایک جیسے ہیں, سارے ملے ہوئے ہیں, الا یہ کہ الحمدللہ جو علماء اور مشائخ ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری ہیں, باقی سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. علماء مشائخ ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ دوسری وجہ سے کام کرتے ہیں, وہ دینی سیاست کہلاتی ہے, وہ اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ورنہ ان کے حرام کاریوں کے اندر ملے ہوئے نہیں ہیں ان کے ساتھ, یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اپنی حرام کاریوں کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جس بل کے مطابق جو ہے وہ ملک کے اندر یہ قانون بن جائے گا کہ گھر کے اندر کسی قسم کا آپ روک ٹوک نہیں کر سکتے, کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ ایسا قانون ہوگا کہ امریکہ یورپ کے اندر جس قسم کی آزادی ہے نا گھریلو لیول کے اوپر, اس سے بھی آگے. وہاں پر بچہ جو ہے وہ فون کر دیتا ہے نا تو وہ پولیس پکڑ کر کے لے جاتی ہے ماں باپ کو, ٹھیک ہے نا. یہ وہی قانون ہے بلکہ اس سے بھی کچھ آگے, ٹھیک ہے نا. بچے کے خلاف, اچھا الفاظ تو ظاہر ہے بہت اچھے استعمال کرتے ہیں, الفاظ تو ایسے استعمال کریں گے ایک عام اندھا بندہ پڑھ کر کے جو ہے نا وہ کہے گا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہونا چاہیے تھا, ہے نا. لیکن اس کے اندر جو انڈر لائن چیزیں ہوتی ہیں وہ تو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس کی ریپرکشنز کیا کیا ہوں گی, اس کے کیا کیا آگے جا کر کے گھریلو نظام کے اوپر نتائج کیا کیا نمودار ہوں گے, وہ تو عوام الناس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو چپکے سے اور بہت تیزی کے ساتھ اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا بچہ نہیں, اب وہ آزاد ہے. ہاں آپ اس کو کھلائیں پلائیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, کھلائیں پلائیں گے آپ, پڑھائیں لکھائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے اب آپ اس کو, وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے. اور اب اس دور کے اندر, اس وقت کے اندر جیسے چاہے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کوئی بتائے نا آپ میں سے, جیسے چاہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں چوائس. اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہے تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر بنو تو اب آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے بلکہ انجینئر بن جائے. ठीक है, हमारे जहन में तो यही है ना कि भाई मैं उसको जो पढ़ाना चाहूंगी ना उसको वो पढ़ना चाहिए। तो गोया के कानून पर बन गया है कि नहीं अब आप बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं है खाली कि जी मैंने तो डॉक्टर बनाना था, वो जो है ना वो तो कोई फलसफी बनना चाह रहा है तो मैं उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो डॉक्टर बने। या इससे अगला दर्जा, इससे अगला दर्जा क्या कि वो फलानी जगह पे शादी करना चाहता है तो अब आप उसको रोक नहीं सकते। अब आप उसको अपने किसी दोस्त की बेटी से शादी करवाना चाहते थे या दो या अपने कजन से उसको शादी करवाना चाहते थे, आप उसको नहीं रोक सकते। वो जहां शादी करना चाहता है उसने उधर ही करनी है। अगर आपने कुछ आगे पीछे ज्यादा किया उसने पुलिस बुला करके आपको अरेस्ट करवा देना है ना। ये अगला दर्जा है, पहले था पढ़ाई वाला दर्जा, दूसरा दर्जा शादी वाला दर्जा। इससे तीसरा दर्जा क्या है जी, शादी के बाद, शादी के यानी इससे ज्यादा बुरा या कि शादी आपकी मर्जी से नहीं करेगा वो या नहीं करेगी वो, ठीक है ना। तीसरा दर्जा क्या है जी, तीसरा दर्जा ये है कि वो बगैर शादी के ही दोस्तों के साथ रहना चाहता है या किसी लड़की के साथ रहना चाहता है, या लड़की है जो कि शादी नहीं करना चाहती वो बगैर शादी के रहना चाहती है, आप उसको रोक नहीं सकते इस काम से, है ना। वो उसकी चॉइस है, वो बगैर शादी के किसी लड़के के साथ किसी आदमी के साथ रहना चाहती है, आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है ना, नहीं रोक सकते। ठीक है जी, पहला दर्जा क्या कि आप उसको पढ़ाई पे मजबूर नहीं कर सकते, जो उसकी मर्जी होगी वो वही करेगा। दूसरा दर्जा आप उसको शादी के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते, जहां उसने करनी है वहीं पे करेगा या करेगी। तीसरा दर्जा अगर वो बगैर शादी के भी कहीं पे रहना चाहती है या रहना चाहता है आप कुछ नहीं कर सकते। चौथा दर्जा बताए ना जरा, चौथा दर्जा क्या है इसका, किसी को अंदाजा भी है कि इसको दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है? ये हम जिन्स परस्ती तो एक वर्ड है खाली, उसमें से एक वर्ड है खाली, ये हम जिन्स परस्ती जी। और ये LGBT, ये पांच वर्ड्स हैं, उसके अंदर पांच भी नहीं है, उसके अंदर आप लगाते जाएं जितने भी, हर एक का एक वर्ड एक मतलब है। एल का अलग मतलब है, जी का अलग मतलब है, बी का अलग मतलब है, टी का अलग मतलब है, क्यू का अलग मतलब है, और क्यू में तो सब कुछ शामिल है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपकी बेटी ये चाहती है कि मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती हूँ, मैं लड़की नहीं रहना चाहती, मैं लड़का बन जाना चाहती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपने ज्यादा आगे पीछे तू तू मैं करी पुलिस, और फिर उसके बाद आपको बाकायदा कड़ा पढ़ाया, कड़ा है ना, GPS डिवाइस आपके हाथ के अंदर डाल दी जाएगी, जैसे आजकल कोरोना में टेस्ट किया है ना इन्होंने GPS डिवाइस, कि जी वो आपको कोरोना आ गया है तो अब आप GPS डिवाइस जो है ना वो फिर आपको ट्रैक करेगी ताकि आप दुनिया में कोरोना ना फैलाएं, है ना, वो तो GPS डिवाइस टेस्ट हो रही थी। ठीक है ना, अब क्या होगा कि अब कोर्ट में आपका बच्चा आपको ले गया ना कि मैं तो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती हूँ, मेरा बाप जो है वो मुझे मना कर रहा है, मेरी माँ मुझे मना कर रही है, तो अब उस बच्चे की हिफाजत के लिए ताकि वो अपनी मर्जी पूरी कर सके आपको वो कड़ा पहना दिया जाएगा जिसके अंदर GPS डिवाइस होगी, ताकि आप अपने बच्चे के करीब भी ना जा सकें, उसको हरास ना कर सकें, फोन कॉल करने की भी आपको इजाजत नहीं होगी। ये कानून साजी हो चुकी है, ये जहां तक मुझे पता है, बाकी तफसील अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जहां तक मुझे बताया लोगों ने ये हो चुका है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा सब कुछ मेरी मर्जी। लड़का कहे कि मैं लड़की बनना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़का ये कहे कि मैं लड़कों के साथ ही मैं किसी लड़के के साथ शादी करना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़की कहे मैं लड़की के साथ शादी करके जिंदगी गुजारना चाहती हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये है अगला दर्जा जो कि इस वक्त दुनिया में राइज उल मरजू यानी राइज हो चुका है। ठीक है, तो भाई हम इस दौर में जिंदा हैं और हमारी प्रायोरिटीज क्या है भाई, हमारी फिक्रें, हमारी सोचें, हमारी मसले, है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें तो अपने छोटे छोटे जो है वो नखरे पूरे करने में भी हमारा सारी जिंदगी निकल जाती है, हमारे नखरे पूरे नहीं होते। ठीक है ना, एक वाकया सुना करके अभी खत्म करते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे सुनाया, उनको किसी ने बताया था या कहीं पढ़ा था उन्होंने इसके बारे में, कि अमेरिका के अंदर एक इमाम साहब थे मस्जिद के,
پاکستانی امام صاحب مسجد کے, ٹھیک ہے نا, ان کی بیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا بھی بیٹی کو تو اب پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے تو انٹرنیٹ کی تو ضرورت ہے, تو انہوں نے اپنی بیٹی کو انٹرنیٹ دے دیا, ٹھیک ہے نا. اب بیٹی صاحبہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھائی لکھائی کرتی نہیں کرتی جو بھی کرتی, لیکن انہوں نے ادھر ادھر جو ہے وہ جانا شروع کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر, کچھ دیکھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا, چیٹ گروپس کو سبسکرائب کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو چیٹ گروپس انہوں نے سبسکرائب کیے, یہ وہ چیٹ گروپس تھے جو کہ عورت عورت کے درمیان, سارا معاملہ عورت عورت کے درمیان, وہ والے چیٹ گروپس سبسکرائب کر لیے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ دلیلیں دے دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ بھئی مرد جو ہے نا یہ تو غاصب ہیں, مرد جو ہیں یہ تو عورت کی مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, اور مرد کے ساتھ تو اتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں, عورت عورت کو سمجھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مردوں کو نکالو اپنی زندگی سے, ختم کرو مردوں کا معاملہ, اپنی زندگی تم عورت کے ساتھ گزارو, ہر قسم کی ضروریات عورت کے ساتھ پوری کرو. یہ اس پاکستانی امام صاحب کی بیٹی جو ہے نا اس کو یہ بات چڑھ گئی اس کو. اب اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے وہ ایک اور پاکستانی لڑکی کے ساتھ دوستی کری کہ جی میں اس کے ساتھ پڑھائی لکھائی کروں گی. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں, بھائی لڑکے سے کوئی تھوڑی دوستی کر رہی ہے, لڑکے کے ساتھ کوئی تھوڑی پڑھائی کر رہی ہے, وہ تو لڑکی کے ساتھ کر رہی ہے, لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ہے نا. اب اس نے اس لڑکی کے ساتھ یعنی اپنی دوست کے ساتھ راتیں گزارنی شروع کریں, ٹھیک ہے نا, اور پھر اور آگے بڑھی, حتیٰ کہ اس طرح کی اس نے اور کئی دوستیں بنا لی, اور پھر باقاعدہ اس نے مضمون لکھا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو پایا جو کہ بالکل یہی خیالات رکھتی تھیں, لڑکیاں, پاکستانی لڑکیاں, اور بھی آسان تھا میرے لیے یہ, بھائی گوری لڑکی کے ساتھ تو پھر چلو ہم اینٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پاکستانی پیرنٹس کے, بھائی گوری نہ غیر مسلم ان کے ساتھ, پاکستانی لڑکیاں اتنی مل گئیں اس کو یہ حرکتیں کرنے کے لیے, اور گھر والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. بہت عرصے کے بعد پھر جب بم پھٹا تو پتہ لگا تو باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالنا تو کوئی جرم ہے نہیں وہاں پہ, اس لیے کہ ویسے ہی گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پہلے, تو گھر سے نکال دیا اس کو, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا رہنے شروع ہو گئی اپنی دوستوں کے ساتھ. تو پھر لکھتی ہے کہ پھر جو ہے نا فیملی کے اندر کسی نے پارٹی کری تو ان فیملی والوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, تو اس پارٹی میں انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا, تو وہاں پر جب میں گئی تو میرے باپ نے تو مجھے دیکھنے سے انکار کر دیا, اس نے تو مجھ سے بات نہیں کری. بالآخر جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے نا پارٹی سے تو اس وقت میں گئی اور اپنے باپ سے لپٹ گئی, ہے نا, لیکن میرے باپ نے جو ہے مجھے پیار بھی نہیں کیا اور مجھے جو ہے وہ انہوں نے دھتکار دیا, اور یہ وہ بیان کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ فکشن نہیں ہے, یہ اصل کہانی ہے, اصل واقعات ہیں, اور اس طرح کے تو بے تحاشا. اور اس وقت جو ہے وہ سکولوں کالجز کے اندر یہ مہینہ جون کا مہینہ جو اب ختم آنے والا ہے, پتہ نہیں اس کو دوبارہ آگے ایکسٹینڈ نہ کر دیں, جون کا مہینہ اس وقت دنیا میں باقاعدہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے کہ آپ جیسی مرضی چاہے اپنی زندگی گزاریں, مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ, یا ہر ایک کے ساتھ جیسی مرضی, اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر شرم نہ کریں. بالکل آپ کو شرم کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. تو اس وقت جو جون 2021 کا مہینہ گزرا ہے نا, یہ تھا دا منتھ آف پرائڈ. پرائڈ کس کے اوپر؟ LGBT کے اوپر پرائڈ. فخر کے ساتھ آپ رہیں, چھپ چھپا کے کیوں رہتے ہیں اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ منتھ آف پرائڈ تھا, اور یہ پرائڈ پوری دنیا کے اندر باقاعدہ کارپوریشنز نے, کمپنیوں نے ان کے جھنڈے لگائے, ان کے کلرز لگائے, جس طرح وہ ہوتا ہے نا وہ بریسٹ کینسر کے لیے جو ایک خاص قسم کا بو ہوتا ہے, بھئی ہم ان کے بریسٹ کینسر والوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, سولیڈیریٹی شو کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے ان کے خاص کلرز ہوتے ہیں, کچھ ان کا کلرفل ایک جھنڈا ہے, اس جھنڈے کو جو ہے وہ کارپوریشنز نے اپنے دفتروں کے اندر لگایا. کارپوریشنز نے خالی نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکولوں نے اس کو لگایا ہے, اور اس کے اوپر پھر کلاسز کری ہیں, جیسے اسمبلی ہوتی ہے, اسمبلی کے اندر ہوتا ہے نا کسی خاص ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے, رائٹ. فلسطین کے اندر یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اچھا جی کسی اسلامک اسکول کے اندر فلسطین کے اوپر بات کریں گے. اس طریقے سے دا منتھ آف پرائڈ کے اندر چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں, ہمارے ایک دوست ہے کینیڈا کے اندر, بچہ ان کا 7 سال کا ہے,
اس کو ای میل آئی, انہوں نے مجھے فارورڈ کری وہ ای میل کہ جی کل جو اسمبلی ہوگی نا اس کے اندر وی ول ٹاک اباؤٹ پرائڈ, ایل جی بی ٹی, اے بی سی ڈی, کیو آر ایس ٹی, جو بھی اس کے بہت سارے ٹرمز ہوتی ہیں اس کے اندر, اس کے اوپر ہم اسمبلی کے اندر بات کریں گے. اسکولوں کے اندر یہ بات, ہر جگہ ہر لیول کے اوپر بات, ٹھیک ہے نا. اچھا آخری بات اس کے اندر کہ یہ نان مسلمز نہیں, اس کے اندر بہت سارے سو کالڈ مسلمان شامل, کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین کے اندر کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل ہے, ہمارا دین ان کے خلاف نہیں ہے, ہمارا دین تو ان کو سپورٹ کرتا ہے ان ساری باتوں کو. اور بدبخت لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر حدیث کوٹ کر رہے ہیں, حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تھا نا کہ جی صحابہ جو ہے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اپنے یعنی کہ بھئی ہم جو ہے وہ ساری رات عبادت کیا کریں گے, ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جایا کروں گا, اور ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھا کروں گا, تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ جو ہے نا دا باڈی, یور باڈی ہیز رائٹ اوور یو, اس حدیث کو استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو بھی سیکشوئل پریفرنس ہے, جو بھی تمہارا, وہ تمہاری باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے. اور دیکھو حدیث کے اندر یہی لکھا ہے, نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا, تمہاری باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے. تو دین سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آگے بچوں کو کیا پتا حقیقت کیا ہے, ان کو تو ان کے ماں باپ نے ویسی کچھ نہیں پڑھایا, ویسی ان کے ماں باپ نے جو ہے وہ ان کو اللہ والوں سے دور کر کے رکھا, علماء مشائخ سے دور کر کے رکھا. تو جب وہ جا کر کے چیٹ گروپس کے اوپر اور انٹرنیٹ ویب سائٹس کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور پھر ان کو دینی دلیلیں بھی ملیں گی, اب کیا چیز ہے رکاوٹ, کون سی چیز رکاوٹ رہ جاتی ہے ان کے لیے, رائٹ. اور ماں باپ کچھ کر نہیں سکتے, ہے نا بھائی. تو بھائی ماں باپ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے, ماں باپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان قانون سازیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, کوئی قانون ان کو نہیں روک سکتا اس چیز سے. ماں باپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے اور اپنی اولاد کی ایمان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, کون سا قانون ان کو روک سکتا ہے اس چیز سے. اور پھر ماں باپ شروع سے اپنے بچوں کی ذہن سازی اور دل سازی کر سکتے ہیں, اگر ان کی توجہ بن جائے اس طرح, اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے, خود بات سمجھ میں آ جائے, تو جب وہ اپنے بچوں کی قلب سازی کریں گے نا, دل سازی کریں گے, دنیا کا کوئی قانون, کوئی چیز ان کو پھر گمراہی کے راستے کے اوپر نہیں ڈال سکتی. یہ تین چیزیں ماں باپ کر سکتے ہیں, نہ امریکہ کا قانون ان کو روک سکتا ہے, نہ کینیڈا کا قانون روک سکتا ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی قانون سازی اس کو روک سکتی ہے. اپنی اصلاح کرنا, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا, اور پھر اولاد کی اصلاح کے لیے, اولاد کی تربیت کے لیے اسباب اختیار کرنا, ہے نا, یہ ہر ماں باپ کر سکتا ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے, یہ ساری جو ایک گھنٹے سوا گھنٹے آپ کے سامنے جو باتیں کرنی ہے نا, اصل مقصد تو یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ قانون پاس ہو گیا اب آپ جو ہے چلیں جی سڑکوں میں نکلنا شروع ہو جائیں اور آپ یہ کرنا شروع کرنا, آپ تو ویسے بھی یہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا بلکہ آج کے دور کے اندر یہ, ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر پڑ گئی, تو الحمدللہ ہم نے سب کچھ پا لیا. اور اگر یہ بات ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اگر ہم آپ کو آگے کی 10 آیات کی بھی تفسیر پڑھا دیتے تو بھی کچھ نہیں پایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو آگے کی آیات انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا